SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। G20 शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले रविवार को PTI एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिरता और निर्णायक जनादेश के दोहरे पहलुओं पर जोर देते हुए कहा कि 2014 से पहले के 3 दशकों में सरकारें अस्थिर थीं और इसलिए बहुत कुछ करने में असमर्थ थीं। उन्होंने कहा कि स्थिरता के कारण पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने G20 को पूरे भारत में व्यापक स्तर पर करने का उदाहरण पेश किया। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले 28 पार्टी विपक्षी गठबंधन की उभरती एकता के सामने प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणियां राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो भाजपा की चुनावी रणनीति भी स्पष्ट करती हैं कि वह G20 के सफल आयोजन और स्थिर सरकार को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 5 दिन के संसद के विशेष सत्र की घोषणा को अभी विपक्षी पार्टियां पचा भी नहीं पाई थीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जारी की गई एक अधिसूचना ने सभी को फिर से अचंभे में डाल दिया है। शनिवार को मोदी सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी बना दी। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ में सौंपी गई है। इसके अन्य सदस्य हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष N.K. सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। लेकिन श्री चौधरी ने अपना नाम घोषित होते ही न केवल समिति से किनारा किया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख इसे आम चुनाव से पहले की गई धोखाधड़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बताया। लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार द्वारा बिना उनकी राय के इस अचानक लिए गए निर्णय की आलोचना की है। विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार इंडिया यानी इंडियन नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के बैनर तले उनकी एकता से घबरा कर ऐसे कदम उठा रही है जो भारतीय संघवाद के खिलाफ हैं और संविधान विरोधी भी हैं। विपक्ष ने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए इसे एक डमी कमेटी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। मोदी सरकार की इस नई रणनीति से निपटने के लिए श्री खड़गे ने 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मुंबई में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन ने चुनाव के लिए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम तय की है और 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान किया है। सीट शेयरिंग का फैसला 30 सितंबर तक लिया जाना है। DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता उदयनिधि स्टालिन के एक विवादास्पद बयान ने भाजपा को इंडिया गठबंधन खासकर DMK और कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे हैं और राज्य सरकार में खेल मंत्री हैं। उन्होंने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया और कोरोना से करते हुए उसके उन्मूलन की बात कही। उनके इस बयान के बाद भाजपा के सभी नेता और कई केंद्रीय मंत्री DMK समेत इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि के बयान की तुलना हिंदुओं के नरसंहार के आह्वान से कर डाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की एक चुनावी रैली में इसे सनातन धर्म का घोर अपमान बताया।
2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या?
अपने बयान पर बवाल खड़ा होता देख उदय निधि ने एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो लोगों को जाति धर्म में विभाजित करता है। सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। मैं किसी भी मंच पर पेरियार और अंबेडकर के व्यापक लेखन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं, जिन्होंने सनातन धर्म और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर गहन शोध किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम, जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं, ने उदय निधि के समर्थन में एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु की आम बोलचाल में सनातन धर्म का अर्थ जाति व्यवस्था वाला समाज है। ऐसा क्यों है कि हर कोई जो सनातन धर्म के लिए बल्लेबाजी कर रहा है वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से ही आता है जो इस व्यवस्था के लाभार्थी हैं। किसी के खिलाफ नरसंहार का कोई भी आह्वान नहीं किया गया था, यह एक शरारती स्पिन है। उनके इस ट्वीट के बाद बवाल और भी बढ़ गया। भाजपा के दर्जनों नेताओं और प्रवक्ताओं ने कांग्रेस और डीएमके पर जमकर हमला बोला और साफ कर दिया कि वे इसे चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने उदय निधि के बयान की निंदा करते हुए इसकी असली वजह भाजपा द्वारा धर्म का राजनीतिकरण करना बताया।
धर्म को राजनीति में लाकर धर्म का को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसका उसे पॉलिटिसाइज किया।
लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा भी कम संकट में नजर नहीं आ रही है। 1 सितंबर के दिन जालना जिले में हुए लाठीचार्ज के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन ने और भी तेजी पकड़ ली है। जालना की हिंसा में 38 पुलिस कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए थे। जालना की घटना के बाद मराठा क्रांति मोर्चा की अगुवाई में लाखों लोगों ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा आरक्षण की समर्थन की मांग करते हुए बड़े जुलूस निकाले। मोर्चे और विपक्षी पार्टियों ने लाठीचार्ज के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोषी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार की तुलना जनरल डायर से की।
अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदे और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है? जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता है। और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से।
मुख्यमंत्री शिंदे ने लाठीचार्ज पर दुख जताते हुए इसकी जाँच उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी को सौंप दी है और कहा है कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। भारत ने ओमान में आयोजित एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत ने फाइनल्स में कांटे के मुकाबले में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। रेगुलेशन टाइम के समाप्त होने के बाद दोनों टीमें 4-4 कर बराबरी पर थीं। भारत की इस जीत के असली हीरो भारतीय गोलकीपर सूरज कारकेरा रहे, जिन्होंने कई शानदार बचाव किए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.